आकांक्षा और अलीज़ा रिवांश के कमरे में थे, जहां वो उसके कमज़ोर पढ़ने पर उसका सच जानने के लिए आई थी। आकांक्षा रिवांश का हाथ पकड़कर बैठी थी, लेकिन 5 मिनट पूरे होने पर उसके ऊपर अलीज़ा का जादू टूट गया और वो अपने होश में आ चुका था। जवाब दो, तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रही हो? रिवांश जोर से चिल्लाया। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले आकांक्षा ने खुद को अदृश्य कर लिया। जल्द ही वो दोनों वहां से चली गईं और अपने कमरे में थीं। जबकि उन दोनों के अचानक गायब होने की वजह से रिवांश बुरी तरह हड़बड़ा गया था। उसने जल्दी से अपने कमरे की लाइट ऑन की तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की मेरी आंखों के सामने थी। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। उसने मेरे हाथ पकड़ रखे थे। जरूर जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। पिछली बार उस आधी खाई हुए एप्पल को मैंने भ्रम समझकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। मैं इस बार सच का पता लगा कर रहूंगा। रिवांश गुस्से में अपने कमरे से बाहर आया और होटल के उस फ्लोर में जाने लगा जहां जाह्नवी और उसकी फैमिली रुकी थी। पूरे होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। वहां नाइट स्टाफ के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। रिवांश गुस्से में ऊपर पहुंचा तो उसे जाह्नवी की माँ कामना जी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी आंटी, उसने कामना जी को देखकर आवाज़ दी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ सुनकर कामना जी उसके पास आकर बोली, तुम तो वही हो ना जिसने वहां पर सिक्योरिटी लगवाई थी ताकि हमारे यहाँ का कोई भी गेस्ट तुम्हारी साइड नहीं जा सके। माता रानी के जगराते वाले दिन तुम्हें और तुम्हारी होने वाली पत्नी को मैंने देखा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपकी बेटी जाह्नवी की एक फ्रेंड है जो इस शादी में आई हुई है, रिवांश ने कहा। उसकी तो काफ़ी सारी फ्रेंड्स यहाँ पर आई हुई हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो लंबे बालों वाली लड़की या? कामना जी बोल रही थी लेकिन रिवांश ने उनकी बात काट कर कहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो स्पेक्स लगाती है, मुझे उसका नाम नहीं पता। ओ आकांक्षा, शायद तुम आकांक्षा के बारे में पूछ रहे हो। उनके मुँह से आकांक्षा का नाम सुनकर वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। क्या सच में उस लड़की का नाम आकांक्षा है? उसने हैरानी से पूछा। क्यों, उसका कोई दूसरा नाम भी है? मुझे तो इसी नाम का पता था। बोलो, तुम्हें उससे क्या काम है, वो भी इतनी रात को? कामना जी ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? जी नहीं। अगले ही पल रिवांश के चेहरे पर फिर गुस्से के भाव थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो लड़की आधी रात को मेरे कमरे में आ गई और पता नहीं कौन सा जादू टोना कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी की अभी उसी से मिलना है। वरना? वरना क्या? एक तो तुम हमारे फ्लोर पर घुस आए हो, ऊपर से हमें ही देवर दिखा रहे हो, कामना जी ने गुस्से से कहा। ये पूरा होटल मैंने बुक किया है। अगर आपने अभी के अभी मेरी उस लड़की से बात नहीं करवाई तो मैं मैनेजर को कहकर आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। फिर करते रहना कहीं और जाकर शादी, रिवांश ने धमकी दी। होटल से निकलवाने की बात सुनकर कामना जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम दोनों मेरे सामने ही बात करोगे। रिवांश ने उनकी बात मान ली। कामना जी उसे जाह्नवी के कमरे तक लेकर गईं। अलीज़ा और आकांक्षा वहां आ चुकी थीं। कामना जी बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर अलीज़ा ने उठकर दरवाज़ा खोला। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी नींद से उठकर आ रही हो। बोलिए आंटी, आपको इस वक्त क्या काम है? जानती है ना, संगीत फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। एक तो पहले ही नाच लाच के पैरों में दर्द होने लगा, ऊपर से आप कल भी शादी के चक्कर में सो नहीं पाएंगे। कम से कम अब तो चैन से सोने दीजिए। अलीज़ा उनके सामने ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उन्होंने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। आकांक्षा और जाह्नवी कहाँ है? कामना जी ने सख्त लहजे में पूछा। वो दोनों तो LOC पर गई हैं, सुना है वहाँ सिक्योरिटी के लिए किसी की ज़रूरत है। अलीज़ा की बात सुनकर कामना जी और रिवांश उसकी तरफ गुस्से में देख रहे थे। ऐसे मत देखिए, इतनी रात को दोनों कहाँ होगी? आप जानते हो ना अपनी बेटी को कि वो जल्दी से नहीं उठती। उसकी फ्रेंड आकांक्षा भी बिल्कुल उसी की तरह है, दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं। इतनी आवाज़ होने के बावजूद भी इनकी नींद नहीं खुली और मुझे भी दरवाज़ा खोलने आना पड़ा। बोलते हुए अलीज़ा ही बेड की तरफ इशारा किया जहाँ पर जाह्नवी और आकांक्षा सो रही थीं। मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, वैसे भी अंदर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रिवांश अलीज़ा को धकेल कर अंदर गया और उसने लाइट ऑन की। सामने बिस्तर पर आकांक्षा और जाह्नवी सोई हुई थीं। ये कैसे हो सकता है? अभी 15 मिनट पहले ये लड़की मेरे कमरे में थी और अब? जैसे ही रिवांश ने ये कहा, कामना जी अंदर आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा काम हो गया ना, चलो यहाँ से। तुम आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, आधी बातें नशे में थोथोकर करते हो, पता नहीं क्या पी रखा होगा। कामना जी रिवांश को बाहर ले जाते हुए बड़बड़ा रही थी, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो इस लड़की का नाम आकांक्षा है, मुझे सपने में भी अक्सर इसी नाम की लड़की दिखती है। ऊपर से थोड़ी देर पहले ये लड़की मेरे कमरे में थी और अब यहाँ आराम से सो रही है। क्या सच में मुझे कोई भ्रम हो गया है? रिवांश असमंजस की स्थिति में वापस अपने फ्लोर पर चला गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। थक हार कर उसने फर्स्ट एड बॉक्स से एक नींद की गोली निकाली और उसे लेकर आंखें बंद करके सो गया। रिवांश और कामना जी के वहां से जाने के बाद अलीज़ा ने फिर से कमरा बंद किया। उसके कमरा बंद करते ही आकांक्षा और जाह्नवी झट से बिस्तर से खड़ी हो गई। आज तो मरते मरते बचे हैं, मुझे नहीं पता था कि 5 मिनट पूरे होते ही उसे होश आ जाएगा। मेरी तो हार्टबीट अब भी हाई है,
आकांक्षा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, जो कि अभी भी घबराहट के मारे बहुत जोर से धड़क रहा था। तुमने उसके बारे में सब पता लगा तो लिया ना, कहीं ऐसा ना हो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। जैसे ही जाह्नवी ने कहा, आकांक्षा के चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, इन सब के चक्कर में मैं तुम्हें पूछना ही भूल गई थी, अलीजा ने भी वही सवाल पूछा। आकांक्षा ने उनकी बात पर हामी भरी और कहा, लेकिन अभी इस बारे में कुछ मत पूछना, हम कल इसके बारे में बड़े दादू से बात करते हैं। चलो अब सो जाओ, वैसे भी काफी रात हो गई है। जाह्नवी और अलीजा ने हाँ कहा। उसके बाद लाइट बंद करके वो तीनों सोने चली गई। अलीजा और जाह्नवी सो चुकी थी जबकि आकांक्षा अभी भी कमरे की सीलिंग की तरफ देख रही थी। क्यों हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा होता है, हर बार तुम्हारी मासूमियत को सहारा बनाकर तुम्हें छला जाता है। पिछली बार तो फिर भी तुम समझदार थे, लेकिन इस बार? सोचते हुए आकांक्षा की आंखें नम थीं, ना चाहते हुए भी वो उन सब बातों को सोचने लगी जो दृश्य उसने बंद आंखों से रिवांश के हाथ पकड़ने के बाद देखे थे। कब्रिस्तान के अंदर एक बच्चा दो कब्रों के पास बैठा था, उनमें से एक के ऊपर रोबिन जॉनसन तो दूसरी पर नैन्सी जॉनसन लिखा हुआ था। वहां काफी तेज बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदों से उस बच्चों के आंसू भी धुल गए थे। मम्मा, पापा, प्लीज कम बैक, सब कहते हैं कि अब आप लोग वापस नहीं आएंगे, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बच्चा रोते हुए चिल्ला रहा था। बच्चा काफी देर तक वहां पर बैठकर रोता रहा। वहां से थोड़ी दूर खड़े दो आदमी उस बच्चे को देख रहे थे। सर, अब तो उस बच्चे को यहाँ से भेज दीजिए, उसे समझाइए कि अब उसके माँ बाप कभी वापस नहीं आने वाले, कब तक यहाँ बैठकर उनका इंतजार करेगा? वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा।
मैं एक बच्चे की आस नहीं तोड़ सकता, थोड़ी देर बाद उसे खुद समझ आ जाएगा कि अब उसके मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे, तब ये अपने आप यहाँ से चला जाएगा। इसकी फैमिली वालों ने तब तक इसका ख्याल रखने को कहा है, मैनेजर ने जवाब दिया। लेकिन सर, बाहर बहुत बारिश पड़ रही है, ये बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कहीं इसे कुछ हो गया तो सारा दोष हमारे ही मत्थे मढ़ा जाएगा, उस आदमी ने कहा। सही कह रहे हो, ऐसा करो कि जाकर उसे एक छाता दे आओ और बोलो कि उसके माँ बाप ने भिजवाया है, मैनेजर ने कहा और अंदर चला गया। बुजुर्ग आदमी अपने साथ छाता लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा। ये लो बच्चे, ये तुम्हारे मम्मी पापा ने भिजवाया है, उसने छाता पकड़ाते हुए कहा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, उन्हें बोल देना कि वो मेरे पास वापस आ जाएं, बच्चे ने रोते हुए कहा। तुम मेरे साथ अंदर चलो, वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस आदमी ने बच्चे को बहलाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, यहां तक कि उसने उसका दिया छाता भी नहीं लिया। थोड़ी देर मिन्नतें करने के बाद थक हार कर उस आदमी को वहां से वापस जाना पड़ा। रात के 2 बज गए थे, उसके बावजूद वो बच्चा अभी तक वहीं पर बैठा रो रहा था। बारिश बंद हो गई थी लेकिन बच्चे की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, जो कि अपने माँ बाप की वापस आने की उम्मीद बांधकर वहां बैठा था। प्लीज कोई तो मेरे मम्मी पापा मुझे लाका दो, बच्चा रोता हुआ जोर से चिल्लाया। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चलो तुम्हारे मामा पापा के पास चलते हैं। बच्चे ने ऊपर नजरें उठाकर देखा, उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा आग में जल रहा था, जिसे देखकर बच्चा डर गया और उससे दूर हट गया। हमसे डरो मत, सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हारे माँ बाप को वापस लौटा सकते हैं, आदमी ने कहा। क्या आप गॉड हो? आपको गॉड ने मेरे पास भेजा है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर गुस्सा था और उसके चेहरे पर चल रही आग और भी तेज हो गई थी। जैसे तैसे उसने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, हम गॉड नहीं हैं, गॉड बुरे होते हैं जिसने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीन लिया, हम वो हैं जो तुम्हारे माँ बाप को वापस तुम तक लेकर आएंगे। फिर जल्दी से ले आइए ना, बच्चे ने कहा। ऐसे नहीं, हमारे रूल्स थोड़े अलग हैं, अगर हम तुम्हें कुछ देंगे तो तुम्हें बदले में हमें भी कुछ देना होगा, बोलो मंजूर है? उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं आपको अपनी पिगी बैंक से सारे पैसे निकाल कर दे दूंगा, बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया। हमें पैसे नहीं चाहिए, बस प्रॉमिस करो कि तुम कभी गॉड की पूजा नहीं करोगे और उनके सामने भी नहीं जाओगे, तुम्हें बस हमारी पूजा करनी होगी और हमारी दी ये अंगूठी को हमेशा धारण करके रखना होगा। उस आदमी की बात सुनकर वो बच्चा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे शांत देखकर उस बुजुर्ग आदमी ने फिर कहा, लगता है तुम्हें अपने मम्मी पापा वापस नहीं चाहिए, कहकर वो वहां से जाने लगा कि तभी बच्चा उसके पीछे दौड़कर गया और कहा, मुझे मंजूर है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए एक अंगूठी बच्चे की उंगली में पहना दी और कहा, चलो अब अपनी आंखें बंद करो। उसके कहने पर बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आदमी कब्र के पास गया और उसे खोलकर उन दोनों के मुंह में रख अपने रक्त की कुछ बूंदें डाली। उसके बाद रॉबिन और नैन्सी अपने कब्र से खड़े हुए, उस आदमी के सामने उन दोनों के सिर झुके हुए थे। हम दोनों को फिर से एक नया जीवन देने के लिए शुक्रिया, उन दोनों ने एक साथ बोला। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मेरे सामने शुक्रिया अदा कर रहे हो, मैं शैतान हूँ, शैतान जो कुछ देता है तो उसके बदले में एक कीमत लेता है, तुम दोनों को भी वो कीमत अदा करनी होगी, उस आदमी ने भयंकर हंसी हंसते हुए कहा।
रॉबिन और नैन्सी उसके भयानक चेहरे को देखकर डर गए। तभी उनकी नज़र दूर खड़े उस बच्चे पर गई जो आंखें बंद करके खड़ा था। क्रमशः